તારીખ 6/5/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 254 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા ઉરીવલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 92
અંધતા ચારિત્ર ગુણ કે શોષણ સે માયાચરણ મેં વ્રત નિયમ સંયમ આદિ ભી ગ્રહણ કરતે હૈ લેકિન યહાં પર તો દર્શન મોહ કા અનુભાગ કૈસે છૂટે પર કૈસે અનુભાગ દર્શન મોહ કા બડે નહીં મંદ હો જાય એસે દર્શન મોહ ઉપશમ કરને કી ભૂમિકા ઉપશમ કી શ્રેણી મેં જો આતે હૈ ઉનકો પાત્રતા કહેને મેં આઈ હૈ જો પાત્રતા હૈ ઉસકા સંબંધ ના જ્ઞાન કે શોષણ સે હૈ ના ચારિત્ર કે શોષણ સે હૈ इसका संबंध दर्शन मोह के रस के टूटने के अनुभाव के टूटने से होता है जबकि पहले उपशम सम्यक दर्शन आता है तो वहां तक वो कमजोर हो जाएगा कि एक दफे वो उपशम हो जाएगा जहां तक वो बलवान रहेगा बलवान कभी दबता नहीं है किसी से नहीं दबता है और ये सब में बलवान कोई परिणाम होते हैं तो दर्शन मोह के हैं चारित्र मोह के नहीं है तो मुमुक्षु को चाहिए कि पहले अपने दर्शन मोह के अनुभाव को टूटने के पुरुषार्थ में लगे और जगह अपनी अल्पक शक्ति का व्यय नहीं करे जिससे सही काम हो जाए ये इसका महत्व है। कहां तक लेना है जी? 5:20 तो हो गई है, 5:15 का टाइम है ना। मैं जीव हूं और अजीव नहीं हूं, इसमें परमार्थ में से और अध्यात्म से जीव में क्या क्या लेना और अजीव में क्या क्या लेना चाहिए खुलासा करें, समझाइए। मैं जीव हूं तो जीव स्वरूप हूं, मूल स्वरूप हूं, यही इसका परमार्थ है। जैसा व्यायिक स्वभाव को हो, परम पारिणामिक भाव को हो, उसमें मैं जीव हूं ऐसा लेना है और बाकी के सब अजीव है, मेरे से भिन्न है, ऐसा परमार्थ इसमें लेने का है। मैं जीव हूं और अजीव नहीं हूं, इसको परमार्थ से अध्यात्म से जीव में क्या लेना और अजीव में, तो ही प्रश्न है, दोनों साइड में एक ही प्रश्न है। दीन भयो प्रभु पद व्यपे मुक्ति कहाँ से हो यह कथन, एवं कल के कथन में आया कि परम दीनता स्वच्छंद को टालने का कारण है, समझाइए। देखिए शास्त्रों में परस्पर विरुद्ध लगे ऐसे कथन मिलेंगे, तो ये कहेंगे कि अधमा अधम अधिको पतित सकल जगत में निश्चय आए बिना साधन करेंगे क्या, और कोई ज्ञानी यही ज्ञानी ऐसा कहेंगे कि मैं परमात्मा हूं ऐसा निश्चय कर, तो मैं दीन अधमा अधम हूं और मैं परमात्मा हूं, दो बात विरुद्ध लगती, एक विरुद्ध नहीं है, एक द्रव्य सापेक्ष है एक पर्याय सापेक्ष है। तो जहां जो बात निष्पेक्षता से चली हो उसे वहां समझना चाहिए। जो अपने दूषित परिणाम में अहंभाव करके छोड़ता नहीं है, उसको इस घोड़े पे से उतारने के लिए कहते हैं कि तुम एक दफे तो अधमा अधम हो ऐसा अपने को जान ले। जब वहां से उतरेगा तभी तुझे मैं परमात्मा हूं स्थान पर विराजमान होने का अवकाश मिलेगा, लेकिन अहम पड़ा दो जगह हो सकता नहीं। वर्तमान दूषित अवस्था में भी अहम भाव रखे और निर्दोष परमात्मा स्वरूप में भी अहम भाव रखे, ये बात दोनों साथ में नहीं बनती है। क्रम पहला यही है कि अपने दोषों को टाले, देख करके उस स्वच्छंद को दबाए, तभी दर्शन मोह का अनुभाग टूटेगा, तभी आगे की बात होगी पदार्थ निर्णय तक की, फिर मैं परमात्मा हूँ वो तो निर्णय में आएगा, ऐसी बात है।
दुखी कौन है? दुखी है रहा।
जी
दुखी रहा,
मुख्य गौ का सवाल नहीं है, जिस भूमिका में जो करना चाहिए उस भूमिका में वही होना चाहिए। प्रथम भूमिका में सबसे पहले पूर्णता का लक्ष्य करें, मोक्षार्थी बने, फिर अपना स्वच्छंद टालने के लिए अपना दोष का अवलोकन और पक्षपात रूप से अपने दोष को चलते हुए दोष को देखें, विचारे नहीं देखें। फिर इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा हो तो ये बात भी योग्यता को प्रतिबंधक है। इससे आगे जगह जा करके सत्पुरुष को खोजे, उसकी पहचान करे और उसमें परमेश्वर बुद्धि हो, ये सब बात आगे फिर पदार्थ निर्णय में मैं परमात्मा हूँ आएगा। तो बात तो काम तो क्रम से होगा, बिना क्रम कोई कार्य पद्धति के बिना कोई काम जगत में भी होता नहीं है। पैर भी एक के पीछे एक चलता है कि नहीं, व्यवस्था कोई चलने की भी। और सोना है तो बैठने के बाद सोते हैं, सही देरी सो जाते हैं कोई, हाँ लग जाएगा। सोना है तो बैठने के बाद सोया जाता है। हर कार्य में कोई पद्धति है। तो इतना बड़ा कार्य है संसार छोड़ने का पूरा और मोक्ष में जाने का, तो उसकी कोई कार्य पद्धति तो होनी चाहिए। कार्य पद्धति है वैज्ञानिक कार्य पद्धति है, नियत कार्य पद्धति है, जो ज्ञानियों ने कही है उसका अनुसरण करना, वो पद्धति को छोड़ करके स्वच्छंद से अपनी मनमानी कभी करना नहीं, ये मनमानी है। हाँ, तीनों कारण एक ही कार्य पद्धति है, दूसरी पद्धति बदल नहीं सकते। आगम पद्धति और अध्यात्म पद्धति में क्या अंतर है? इन दोनों में शामिल, इन दोनों में शामिल है या नहीं? आगम पद्धति और अध्यात्म पद्धति में वो अंतर है कि अध्यात्म पद्धति में आत्मस्वरूप और आत्मस्वरूप के अवलंबन का विषय ही चलता है, जबकि आगम पद्धति में इसके जो आधार है वो परमाणु है। तो कर्म ग्रंथ वाला जो सिद्धांत है वही आगम पद्धति में आता है। जैसे कि हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ते हैं तो ये शास्त्र आगम पद्धति से लिखा हुआ है, जबकि समयसार अध्यात्म पद्धति से लिखा हुआ है। दूरदृष्टि प्रकाश अध्यात्म पद्धति वाला शास्त्र है। तो उसमें क्या है कि मुख्यतया जो अवलंबन भूत ऐसा आत्मा है अध्यात्म तत्व, और उसका आश्रय से जो होने वाले आध्यात्मिक परिणाम है उसकी चर्चा चलती है, उसी पद्धति से ही सब कथन आते हैं। जबकि आगम पद्धति में चार अनुयोग के सिद्धांत से ये कथन आएंगे, उसमें चार अनुयोग आते हैं आगम में। जाति स्मरण क्या है, इसका सम्यक दर्शन से क्या संबंध है? जाति स्मरण है कि पूर्व भव की स्मृति वाला मति ज्ञान है और सम्यक दर्शन के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। सदमस्त को पूर्ण रूप केवल ज्ञान का स्वाद कैसे आवे? सदमस्त को पूर्ण रूप केवल ज्ञान का स्वाद कैसे आए? इसके मानी क्या लिखते हैं? सदवस्त को पूर्ण रूप केवल ज्ञान का स्वाद नहीं आता है, लेकिन आपका अपना स्वभाव का स्वाद आता है वर्तमान परिणमन में सम्मुख होते ही। सम्यक दृष्टि जीव अशुभ राग में अगले भव के आयु बंद सकते हैं? नहीं, कभी नहीं बनता। सम्यक दृष्टि को अशुभ राग आता है किंतु उस वक्त नए आयु का बंध नहीं होता। सम्यक दृष्टि को नए आयु का बंध तो शुभ उपयोग में ही होता है, अशुभ उपयोग में कभी नहीं होता है, ये नियम है। कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा किसे कहते हैं? इसलिए सम्यक दृष्टि को जो अशुभ अशुभ भाव के मुख्यता वाले हैं, ऐसी गति तीन गति नहीं, दो गति नहीं होती है। त्रियंश और नारकी का बंध नहीं होता, स्त्री पर्याय का बंध नहीं होता, नपुंसक पर्याय का बंध नहीं होता। इस प्रकार के कई जो है वो विच्छेद हो जाते हैं। कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा से कहते हैं, कारण परमात्मा अपने मूल ध्रुव स्वरूप को कहते हैं और कार्य परमात्मा के अवलंबन से होने वाली परमात्म दशा को कार्य परमात्मा कहते हैं। इस तरह से प्रश्न और भी बाकी है तो सबके समय में लेंगे।
साढ़ापाँची पौना छ ब्रह्मचारी वसंतजी भक्ति रहे भाई रमेश भाई आगे जवाना छे तो मैं आयोजक
चंद्र वचनामृत सत्रांक
परम दीनता की कमी को न्यूनता होने का प्रयत्न हो तो योग्य हो ऐसा जानते हैं। यानी परम दीनता की कमी को मिटा दे, सर्व प्रकार से प्रयत्न करके परम विनय में आ जाए तो योग्यता हो जाएगी ऐसा हम जानते हैं। परम दीनता यानी परम विनय इन तीनों में बलवान साधन है। क्या सत्पुरुष के प्रति परम विनय होना ये बलवान साधन है। किसमें बलवान साधन है? योग्यता प्राप्त होने में, पात्रता प्राप्त होने में बलवान साधन है। क्योंकि ऐसे परिणामों से सत्पुरुष को कुछ लेना देना नहीं है, किंतु ऐसे परिणाम जिसको होते हैं ऐसे मुमुक्षुओं को अपने आप निर्मलता वर्धमान होती है, निर्मलता बढ़ जाती है। और निर्मलता बढ़ने से वो अपने पदार्थ को निर्णय करने में, भाव भाषण करने में सक्षम होते हैं, योग्यतावान होते हैं। परम दीनता इन तीनों में बलवान साधन है और इन तीनों का बीज महात्मा के प्रति परम प्रेमार्पण है। विनय विनय के साथ उन्होंने ये बात भी किया है कि सत्पुरुष के प्रति परम प्रेम से अपने सर्वार्पण बुद्धि होना, प्रेम समेत, प्रीति समेत, रुचि समेत, यही तीनों कारणों के होने का बीज है। एक जगह सब बात आ जाती है। ऐसे परिणाम में अगर जहां तक मुमुक्षु नहीं आता है उनका कल्याण होने का कोई अवसर आगे का नहीं बनता है। ये बहुत अपने अनुभव से कृपालु देव ने इस बात को प्रसिद्धि दी है, अपने अनुभव से दी है। मतलब कि हमने तो देखी नहीं ऐसे, इनको तो कोई सत्पुरुष मिले नहीं थे, लेकिन जाति स्मरण ज्ञान से भूतकाल में उन्होंने जो आराधक दशा प्राप्त की थी वो आराधक दशा ऐसे ही की थी जिसका उल्लेख उन्होंने पत्रांक 194 में किया है कि हमको ज्ञान दशा इस प्रकार से प्राप्त हुई थी। और तीन काल में जिसको भी होगी या हुई है सबों को इसी प्रकार से होती है, दूसरे प्रकार से नहीं होती है। 194 में क्या है, अधिक क्या कहें, ज्यादा क्या लिखें। अनंत काल में यही एक मार्ग है, अनंत काल में यह ही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अगर कोई दूसरा उपाय करता है तो उसको ज्ञान प्राप्ति होती है, ऐसा विकल्प भी करने योग्य नहीं है, ऐसा ले लेना, यह तुम्हारा सिद्धांत उल्टा है। ऐसा ही होता है, दूसरे प्रकार से होता ही नहीं। मुमुक्षु की भूमिका की निर्मलता, यथार्थ निर्मलता उसी प्रकार से आती है, दूसरे प्रकार से नहीं आती है। इसलिए मुमुक्षु के जीवन में सत्पुरुष का योग एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है कि जहां से उनको अपने आप मुमुक्षु की भूमिका की निर्मलता आकर के मार्ग में प्रवेश करने की एक परिस्थिति पैदा हो जाती है। पहले और तीसरे कारण को दूर करने के लिए यानी पहला कारण है इस जगत के सुख की अल्पति
सुखेच्छा। तीसरा काल है भाव भाषण नहीं होना।